ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शिरकत करने के लिए अमेरिका में रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच हुई भेंटवार्ता। कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश कार्बन उत्सर्जन न करने वाले देशों को क्षतिपूर्ति दें, इस बात पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर। नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक सामाजिक विकास में पत्रकारिता क्षेत्र की भूमिका प्रशंसनीय है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल का कथन। कृषि तथा पशु पक्षी विकास मंत्रालय ने शहद उत्पादक किसानों की समस्या समाधान करने के लिए की समिति गठित। और ईरान में कोयले की खदान में हुए विस्फोट में 51 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल की स्पष्ट मान्यता है कि कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश कार्बन उत्सर्जन न करने वाले देशों को क्षतिपूर्ति दें। संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में शिरकत के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहे प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। आज जीवाश्म ईंधन मुक्त संसदीय संजाल के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही थी। इस बात के जिक्र के साथ कि नेपाल कार्बन उत्सर्जन में शून्य योगदान करके जलवायु परिवर्तन के असर को रोकने में मदद करता है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित देशों के कार्बन उत्सर्जन के कारण नेपाल के सगरमाथा के पिघलने से इसका असर झेलने वाले समुदाय को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इसी बीच आज ही प्रधानमंत्री ओली और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच भेंटवार्ता हुई। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हुई भेंटवार्ता में महासचिव गुटेरेस ने प्रतिबद्धता जताई कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कारण नेपाल में हिमालयों के पिघलने से हो रही क्षति की पूर्ति के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरसक प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने कहा कि नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पत्रकारिता क्षेत्र की भूमिका प्रशंसनीय है। आज प्रेस काउंसिल नेपाल के 55वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोर्टेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के आंदोलनों में प्रेस जगत ने नेतृत्वदायी भूमिका निभाई है। मौके पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का प्रयोग करने के दौरान देश और जनता के हित सुरक्षित होने के विषय को भी ध्यान में रखना जरूरी है। प्रेस काउंसिल नेपाल के वार्षिकोत्सव समारोह में राष्ट्रपति ने पत्रकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने सांसद रघुजी पंत सहित प्रेस काउंसिल नेपाल के पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया था। समारोह में रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक खगेन्द्र खत्री, मुख्य संवाददाता प्रमोद कुमार सिंह लगायत को अग्रज पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया। इसी तरह 14 लोगों को प्रेस काउंसिल क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार, 11 लोगों को प्रेस काउंसिल युवा पुरस्कार और 5 लोगों को प्रेस काउंसिल नेपाल महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए गए थे। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि संविधान संशोधन का विषय बहस में आ चुका है, इसलिए संविधान के क्रियान्वयन में महसूस हुई जटिलताओं को देखते हुए संविधान संशोधन की बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सभामुख ने आगे कहा कि संविधान जारी हुए 9 साल के दरमियान कितने कानून बने, कितने क्रियान्वित हुए और किस तरह कमियां रह गईं, इन बातों पर सबको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। संविधान सभा सदस्य परिषद नेपाल द्वारा आज सिंह दरबार में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख खिमिरे ने ये बातें कहीं। राष्ट्रीय सभा की विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति ने विश्व जलवायु सम्मेलन COP28 की कार्य प्रगति और COP29 के लिए नेपाल की तैयारी के विषय में आज विचार विमर्श आयोजित किया। सिंहदरबार स्थित समिति में हुए विचार विमर्श में वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही और विभिन्न सांसदों ने हिमालय के पिघलने, हिमताल फूटने से हो रही जनधन की क्षति लगायत मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय फोरम में महत्व के साथ उठाने का सुझाव दिया था। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आपदाओं के समय भौतिक एवं अभौतिक सांस्कृतिक संपदाएं उनका सामना करने की शक्ति, एकता और सहनशीलता प्रदान करती हैं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के संस्कृति विभाग, यूनेस्को, एशिया प्रशांत क्षेत्र का उच्च शिक्षा संजाल लगायत संस्थाओं द्वारा आज राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पांडे ने ये बात कही। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने सुनसरी मोरंग सिंचाई परियोजना में महसूस हो रही समस्याओं का समय पर समाधान करने का सरकारी निकायों को निर्देश किया। सुनसरी की वाराह क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नंबर 1 में स्थित सिंचाई परियोजना के इनटेक का निरीक्षण करने के दौरान मंत्री खड़का ने परियोजना संचालन में महसूस हुई समस्याओं का तत्काल समाधान करते हुए किसानों के खेत बारी तक सिंचाई पहुंचाने का निर्देश किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल प्रहरी के पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोशी को आज काठमांडू से गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दान बहादुर कार्की ने दी। उन्होंने बताया कि जोशी को सूर्यदर्शन सहकारी लगायत के विषय में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। समाजवादी मोर्चा नेपाल सभी 7 प्रदेशों में राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन की तैयारी में है। देश की समसामयिक राजनीतिक अवस्था और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में केंद्रित रहकर प्रदेश स्तर पर सभा सम्मेलन जनाधिकार सामाजिक विकास लगायत विषयों में प्रशिक्षण जल्द ही संचालित होगा। ये बात मोर्चा के नेता प्रमेश हमाल ने बताई। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रवास प्रदेश अंतर्गत दक्षिण एशिया संगठन समिति की बैठक ऑनलाइन शुरू की गई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी गण पार्टी मुख्यालय पेरिस्टाटा से और दक्षिण एशिया संगठन समिति में कार्यरत केंद्रीय सदस्य और पदाधिकारी गण संबंधित देशों से ऑनलाइन के माध्यम से विचार विमर्श में शामिल हुए। बता दें कि माओवादी केंद्र द्वारा केंद्रीय समिति बैठक की तैयारी स्वरूप आयोजित प्रदेश परामर्श बैठक की ये अंतिम श्रृंखला है। बैठक आरंभ करते हुए अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि पार्टी बैठक की अन्य श्रृंखला की तुलना में इस बार अलग तरीके से जनवाद का अभ्यास किया गया। रेडियो नेपाल के केंद्रीय कार्यालय सिंहदरबार में आज से स्तनपान तथा महिला सहायता कक्ष संचालित किया गया है। स्तनपान तथा महिला सहायता कक्ष का आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की सचिव राधिका अर्याल ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति की अध्यक्ष भी रहीं सचिव अर्याल ने महिला मैत्री कार्य संस्कृति से कार्य संपादन में प्रगति होने का विश्वास जताया। मौके पर रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक अमरध्वज लामा ने कहा कि सम्मानित कार्यस्थल से कार्य संपादन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्वी ईरान के कोयला खदान में हुए एक विस्फोट से कम 51 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने इस घटना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि खदान के 2 ब्लॉकों में मीथेन गैस के रिसाव की वजह से ये विस्फोट हुआ है। ये खदान ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 540 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में तबास में है। स्थानीय समयानुसार यह धमाका शनिवार रात 9 बजे यानी नेपाली समयानुसार रात 11:15 बजे हुआ। दक्षिण खुरासान के गवर्नर जवाद घेनात जाद देह ने कहा है कि विस्फोट के समय ब्लॉक में 69 लोग मौजूद थे। ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने लोग अभी जीवित हैं और कितने खदान के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि सरकारी मीडिया ने मृतकों के आंकड़ों में संशोधन किया है। पहले बताया गया था कि इस हादसे में 30 मजदूरों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी IRN ने जानकारी दी। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 पहुंच गई है जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। ईरान के रेड क्रिसेंट के प्रमुख का हवाला देते हुए सरकारी टीवी ने रविवार को कहा था कि 24 लोग लापता हैं। श्रीलंका के वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। 55 साल के दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर NPP गठबंधन के प्रमुख हैं। जीत के बाद दिसानायके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सदियों से जो हमने सपना देखा था वो आखिरकार सच हो गया है। उन्होंने कहा, ये सपना सिर्फ एक नई शुरुआत से ही साकार हो सकता है। सिंहली, तमिल, मुस्लिम और सभी श्रीलंकाई लोगों की एकता इस नई शुरुआत का आधार है। हम जिस नए पुनर्जागरण की तलाश कर रहे हैं वो इस साझा शक्ति और दृष्टि से उभरेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शिरकत करने के लिए अमेरिका में रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच हुई भेंटवार्ता। कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश कार्बन उत्सर्जन न करने वाले देशों को क्षतिपूर्ति दें, इस बात पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर। नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक सामाजिक विकास में पत्रकारिता क्षेत्र की भूमिका प्रशंसनीय है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल का कथन। और ईरान में कोयले की खदान में हुए विस्फोट में 51 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।